अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसके लिए सबसे अधिक महंगे देशों में से एक है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पर छात्र यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, और यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोन्स हैं और साथ ही स्कॉलरशिप भी, जो छात्रों को उनकी फीस के संदर्भ में सहायता करते हैं। तो आज सेटलमेंट गाइड में इसी पर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक 3 साल की डिग्री का खर्च आता है $32,000। अब काफी लोग ये खर्च नहीं उठा सकते। ग्राटन इंस्टीट्यूट पर एंड्रयू नॉर्टन एक उच्च शिक्षा प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। वो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी छात्रों को या तो कॉमनवेल्थ द्वारा सपोर्ट की हुई जगह मिलती हैं या उन्हें फीस देकर मिलने वाली जगह मिलती हैं।
So a Commonwealth supported place is a university place that is subsidised by the federal government, and those subsidies range from only about $2,000 for a law or business degree to more than $20,000 for medicine. But that means that this course is cheaper than a full fee course.
Higher education loan program में यानी help में 4 तरह की loan schemes हैं, और इसमें सबसे आम और लोकप्रिय scheme है HECS. इसके अंतर्गत छात्र जो कि ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए सरकार से लोन ले सकते हैं।
Virtually all undergraduates in Australian universities are eligible for HECS help, with sort of permanent residence being the only major exception. And of those who are eligible, about 90% take up their loan. So this is by far the most popular kind of loan. And if you're an undergraduate, it's pretty unlikely you will have any loan except that.
इसके बाद जब छात्र एक निश्चित राशि से ऊपर पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, तब वो लोन वापस करना शुरू करते हैं। इस समय ये निश्चित राशि $56,000 है, और अगले आर्थिक साल से इसे घटाकर $52,000 कर दिया जाएगा।
At the moment, it's just under $56,000. But for next year, it's going to drop down to, next financial year, it's going to drop down to $52,000. So it'll affect slightly more people than the current threshold.
जून के अंत तक जो ऑस्ट्रेलियन देश के बाहर रहते हैं और जिन्होंने हेल्प उधार लिया, तो उन्हें इसे चुकाने की आवश्यकता नहीं थी जब तक वो देश के बाहर रह रहे हैं। लेकिन 1 जुलाई से अब इसमें बदलाव आया है। एंड्रू बताते हैं कि अब चाहे छात्र बाहर रह रहे हों, उन्हें हेल्प लोन चुकाना होगा। यानी अगर उनकी आय ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बदलने के बाद यहाँ की निश्चित राशि से ऊपर होती है, तो ऑस्ट्रेलियंस की तरह ही वो लोन चुकाएंगे।
From basically this financial year, people will have to repay their help debt overseas, essentially on the same basis as if they were in Australia. So it means that their foreign income will have to be converted into Australian dollars. And if it's over the threshold at which people in Australia have to start repaying, they need to repay on the same basis.
HECS के अलावा 3 दूसरे loans हैं, और जिनके बारे में बता रहे हैं Andrew Norton.
Then there's another scheme called Fee Help, and that applies to students who are in full fee places. And that's mostly postgraduate courses or courses in private higher education providers. SA Help is to pay for your student amenities fee. So each university charges about $300 for extra non-academic services. OS Help is if you want to do a semester overseas in a foreign university, OS Help pays for that. And Vet Fee Help is something that applies to diploma level courses in vocational education.
फी हेल्प में अधिकतम लोन है $1,00,000 का, लेकिन छात्र इस लोन को अपने पूरे जीवन काल में कभी भी ले सकते हैं। CSP को स्थायी निवासी छात्र भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्प लोन सिर्फ ऑस्ट्रेलियन नागरिकों को ही मिल सकता है, और स्थायी नागरिकों को अधिकतर पूरी फीस पहले ही देनी होती है।
So individual universities might offer some extra assistance, but generally it is quite difficult for people who are permanent residents but not citizens. It's a significant disadvantage to being just a permanent resident rather than a citizen.
युवा छात्र यानी 24 वर्ष तक के युवाओं को रहन सहन के लिए भी सहायता मिल सकती है, जो कि यूथ अलाउंस होता है।
Youth allowance applies for young people aged up to 24. fairly complex eligibility, but generally people whose parents earn up to $150,000 can get at least some youth allowance, not necessarily the whole amount. And so that can be a valuable assistance to people who are seeking to go to higher education. Generally, most students also work. So it's a combination of your own income and youth allowance.
अब जो लोग यहाँ शरणार्थी वीजा या अस्थायी वीजा पर हैं, उनके लिए बिना इस सरकारी सहायता के शिक्षा पाना मुश्किल है। रिफ्यूजी काउंसिल के टिम ओकोनर का कहना है कि वो यूनिवर्सिटीज के साथ इस पर काम कर रहे हैं कि ऐसे जरूरतमंद लोगों को स्कॉलरशिप द्वारा सहायता दी जा सके।
They give people who may not have had that opportunity the opportunity to go to university, and what we know through with so many refugees and so many other people who are seeking asylum is that they're desperate to start to rebuild their lives. Education provides routine, and it also provides opportunity, an opportunity to go on and get a better job and contribute to their full potential, and also importantly contribute to the Australian economy. Many refugees want to do.
इस समय वो देश भर में कोई 14 यूनिवर्सिटीज के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और टिम ओकोनर एक छात्र की सफलता की कहानी बताते हैं कि किस तरह एक छात्र की 6 साल तक पढ़ाई नहीं हो सकी जब उसके परिवार को काबुल से भागना पड़ा था और अब वो यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
He missed out on 6 years of school when his family was forced to flee his home in Kabul due to persecution. His father had been killed, so the family decided to flee. They were in Pakistan for a number of years where he wasn't able to access education at all. He came to Australia. He was 21 when he enrolled in school. He started off in year 8 and was quickly accelerated through because he was very bright, picked up English very quickly. He's now studying engineering at one of Australia's most prestigious universities, and last year he received the university medal for his year.
तो ये थी बात उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाली सहायता के बारे में।